एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के एक और अंक में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम साहित्य की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई किताब पढ़ते हुए लगा हो कि अरे ये लेखक कहना क्या चाह रहा है या ये कविता इतनी असरदार क्यों लग रही है?
बिल्कुल होता है, अक्सर होता है। साहित्य की अपनी एक भाषा होती है ना, अपने शब्द, अपने तरीके, जो कभी कभी हमें थोड़ा सा मतलब डरा भी देते हैं।
सही कहा।
इसीलिए आज हम लुईस टर्को की एक बेहद जरूरी किताब द बुक ऑफ लिटरेरी टर्म्स यानी साहित्यिक शब्दों की पुस्तक, इस पर बात करेंगे।
हाँ, ये बहुत सही चुनाव है। ये किताब मानो एक चाबी है उन दरवाजों के लिए जो साहित्य में अक्सर बंद से लगते हैं।
बिल्कुल।
चाहे कोई स्टूडेंट हो जिसे एग्जाम के लिए पढ़ना है, या कोई राइटर जो अपना हुनर सुधारना चाहता है, या हम जैसे आम पाठक जो बस पढ़ने का मजा लेना चाहते हैं।
हाँ, सबके लिए।
ये किताब सबको कुछ ना कुछ देती है। ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, ये तो साहित्य की कला और उसके पीछे के क्राफ्ट को समझने का एक नक्शा है।
क्या बढ़िया का नक्शा। और इस नक्शे को बनाने वाले शख्स भी कम दिलचस्प नहीं थे। लुईस टर्को 1934 में जन्मे और 2021 में गुजरे। टर्को एक जाने माने अमेरिकी कवि थे, विद्वान थे, प्रोफेसर थे। मतलब उनका पूरा जीवन ही साहित्य के नाम रहा, उसे रचने में भी और उसे समझने समझाने में भी।
हाँ, और यही बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। वो सिर्फ क्लासरूम वाले प्रोफेसर नहीं थे,
नहीं,
वो खुद एक मंझे हुए कवि थे। मतलब वो जानते थे कि शब्दों को तराशना कैसा होता है, कहानी गढ़ना कैसा होता है।
सही।
तक उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाया भी, और कहते हैं कि मुश्किल आइडियाज को भी बड़े आराम से समझा देते थे।
हाँ, उनका नजरिया भी थोड़ा अलग था। उनका ज्यादा ध्यान साहित्य के रूप यानी फॉर्म और उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर पर रहता था।
अच्छा।
उनकी एक और बहुत फेमस किताब है द बुक ऑफ फॉर्म्स। उसने तो जैसे काव्य संरचनाओं को समझने का तरीका ही बदल दिया था।
मैंने सुना है उसके बारे में।
तो ये वाली किताब द बुक ऑफ लिटरेरी टर्म्स उसी काम को और आगे ले जाती है, और सिर्फ कविता नहीं बल्कि साहित्य की सभी विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, सबको अपने दायरे में समेट लेती है। वो साहित्यिक शब्दों को सिर्फ अकादमिक पहेलियां नहीं मानते थे, उनके लिए ये लेखक के औजार थे, टूल्स, जिनसे वो अपना जादू रचता है।
लेखक के औजार, ये अच्छा है। तो चलिए फिर सीधे किताब के अंदर चलते हैं। जैसा आपने कहा, ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसका मकसद सीधा है, साहित्य की जो थोड़ी मुश्किल भाषा है उसे आसान बनाना, उसे समझने, उस पर बात करने के लिए हमें जरूरी टूल्स देना। ये साहित्य का टूल किट है।
है ना, एकदम सही टूल किट। ये किताब एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि भाई साहित्य आखिर बनता किन चीजों से है, और हम उन चीजों को, उन तकनीकों को पहचानने और उनके असर पर बात करने के लिए एक कॉमन भाषा, एक साझा शब्दावली कैसे बना सकते हैं।
अच्छा।
टर्को मानते थे कि किसी किताब या कविता को सिर्फ महसूस कर लेना, मतलब अच्छा लगा कह देना, काफी नहीं है। उसकी असली कद्र करनी है तो ये समझना जरूरी है कि उसे रचा कैसे गया है, उसकी कारीगरी क्या है।
और जिस तरह उन्होंने इस किताब को ऑर्गेनाइज किया है वो भी कमाल का है।
हाँ, वो वर्णमाला वाला तरीका नहीं है।
नहीं, आमतौर पर ऐसी किताबें ए से जेड चलती हैं, पर टर्को ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को विषय के हिसाब से और एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखा है।
बिल्कुल। सबसे छोटी इकाई से शुरू करके जैसे ध्वनि और शब्द, फिर बड़े ढांचों तक जाते हैं जैसे शैली और आलोचनात्मक सिद्धांत।
इससे ये पता चलता है कि साहित्य को एकदम रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक सीखने लायक, समझने लायक डिसिप्लिन है। उसका अपना एक लॉजिक है।
सही बात। और इस पूरी कवायद का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है?
लक्ष्य ये है कि पाठक सिर्फ एक पैसिव रिसीवर न रहे।
हाँ।
बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, जो सिर्फ ये ना कहे कि मुझे ये कहानी पसंद आई, बल्कि ये भी बता सके कि क्यों पसंद आई, लेखक ने ऐसा क्या किया जो कहानी इतनी असरदार बन गई।
और ये किताब सबके लिए है, मतलब हाई स्कूल के स्टूडेंट से लेकर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर तक और लिखने वालों के लिए भी।
हाँ। अच्छा, तो आपने बताया कि किताब पारंपरिक चैप्टर्स में नहीं बंटी है, बल्कि पांच बड़े हिस्सों यानी पार्ट्स में है।
जी, जो एक दूसरे पर टिके हैं, मतलब ज्ञान को परत दर परत बनाते जाते हैं।
ठीक है, तो चलिए इन हिस्सों पर थोड़ी और बात करते हैं। पहला भाग कौन सा है?
जरूर। पहला भाग है साहित्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, इसे हम कह सकते हैं बुनियादी औजारों का बक्सा।
अच्छा, टूल बॉक्स।
हाँ, टूल बॉक्स। यहाँ टोरको का तर्क है कि भाई, इससे पहले कि हम किसी बड़े नॉवल या प्ले का एनालिसिस करें, हमें भाषा और कहानी कहने के उन फंडामेंटल टूल्स को समझना होगा जिनका इस्तेमाल हर लेखक करता है।
जैसे?
ये वैसा ही है जैसे कोई शेफ खाना बनाने से पहले मसालों और सब्जियों को समझता है ना।
हाँ बिल्कुल।
तो इस बक्से में क्या क्या औजार हैं?
इसमें कई जरूरी चीजें हैं, जैसे शब्द चयन और वाक्य रचना, डिक्शन एंड सिंटैक्स, यानी लेखक कौन से शब्द चुनता है, उनका क्या असर होता है, जैसे घर कहें या आशियाना, मतलब एक हैं पर एहसास अलग है ना।
हाँ है तो।
और शब्दों को किस क्रम में रखता है। फिर आती है बिंब और अलंकारिक भाषा, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, जैसे रूपक, मेटाफोर, उपमा, सिमिली, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन।
अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच। हाँ, ये वो तकनीकें हैं जिनसे लेखक हमारे मन में तस्वीरें और एहसास जगाता है। सोचिए, शेर जैसा बहादुर कहने से कैसी छवि बनती है।
हाँ, ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने कि ये साहित्यिक तकनीकें हैं। और क्या है इसमें?
फिर बात होती है ध्वनि और छंद शास्त्र की, यानी शब्दों की आवाज का खेल, लय, तुकबंदी, अनुप्रास।
अच्छा, ये तो कविताओं में ज्यादा होता होगा।
कविताओं में तो जान डालते ही हैं, पर अच्छी गद्य रचना में भी एक संगीत, एक फ्लो पैदा करते हैं। और आखिर में मुख्य कथा तत्व, कहानी के खंभे, जैसे कथानक,
प्लॉट, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्लाइमैक्स वगैरह।
हाँ, उतार चढ़ाव, क्लाइमैक्स, अंत, फिर चरित्र, हीरो, विलन, उनके मन की बातें, वो कैसे डेवलप होते हैं, परिवेश, कहानी कब और कहाँ घट रही है, माहौल कैसा है, दृष्टिकोण, कहानी किसकी नज़र से बताई जा रही है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन।
हाँ, ये जरूरी होता है।
और विषय, कहानी का मूल संदेश क्या है, लेखक कहना क्या चाहता है।
बाप रे, तो ये पहला हिस्सा ही अपने आप में पूरा कोर्स है। ये हमें किसी भी कहानी या कविता की चीरफाड़, मतलब क्लोज रीडिंग करने के लिए जरूरी शब्दावली दे रहता है।
बिल्कुल, ये समझने के लिए कि लेखक ने जो जादू पैदा किया वो आखिर किया कैसे।
अच्छा, तो इसके बाद?
इसके बाद आता है भाग दो, कथा साहित्य की विधाएं, जॉनराज ऑफ फिक्शन। अब हम औजारों से आगे बढ़कर देख रहे हैं कि इन औजारों से कैसी कैसी इमारतें, मतलब कहानियां बनाई जाती हैं।
अच्छा, अलग अलग तरह की कहानियां।
हाँ, यहाँ तर्क ये है कि फिक्शन या कथा साहित्य कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरह के परिवारों जैसा है, उपन्यास, लघु कहानी, और उनके भी कई रूप, और हर रूप के अपने नियम होते हैं, अपनी परंपराएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
जैसे कौन कौन से रूप? क्या इसमें वो जासूसी कहानी और प्रेम कहानी जैसी चीजें आती हैं?
हाँ, कुछ हद तक वो भी इसी में आएंगे, पर टर्को मुख्य रूप से उपन्यास और लघु कहानी के फर्क को समझाते हैं, कैसे उपन्यास में ज्यादा स्कोप होता है किरदारों और कहानी को फैलाने का।
लंबा होता है।
हाँ, फिर वो उपन्यास के कुछ खास उप प्रकारों की बात करते हैं, जैसे पिकरेस्क,
वो जिसमें कोई बदमाश सा हीरो होता है।
हाँ, आवारा टाइप का हीरो, या बिल्डिंग्स रोमान, जो किसी किरदार के बड़े होने और सीखने की कहानी होती है, गॉथिक, जिसमें रहस्य और डर का माहौल होता है।
अच्छा,
ये सब जानना क्यों जरूरी है?
ताकि हम समझ सकें कि लेखक किस परंपरा में लिख रहा है और उसके साथ क्या नया कर रहा है, क्या वो नियमों को निभा रहा है या तोड़ रहा है।
और कहानी कहने के तरीकों पर भी बात होती होगी इसमें, जैसे कभी कभी लगता है कहानी सुनाने वाला ही, मतलब, भरोसे के लायक नहीं है।
बिल्कुल, उसे अविश्वसनीय कथावाचक कहते हैं।
हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प तकनीक है। इसी तरह चेतना प्रवाह या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीकें हैं, जहां हम सीधे किरदार के विचारों की धारा में बहने लगते हैं, जैसे वो सोच रहा है। ये भाग हमें सिखाता है कि हर विधा, हर जॉनर पाठक से एक तरह का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेखक या तो उस अनुबंध को निभाता है या जानबूझकर तोड़ता है, और दोनों ही सूरतों में कुछ दिलचस्प होता है।
मतलब विदा कोई जेल नहीं,
नहीं,
बल्कि एक खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड।
खेल का मैदान, ये अच्छा कहा।
अच्छा, अब कहानियों से निकलकर मंच की ओर चलते हैं। भाग थ्री, नाटक की विदाएं, जॉनराज ऑफ ड्रामा। नाटक तो पढ़ने से ज्यादा देखने की चीज है ना?
एकदम सही, और यही इस भाग का सेंट्रल पॉइंट है। नाटक साहित्य का वो रूप है जो परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। कहानी यहाँ लंबे लंबे डिस्क्रिप्शन से नहीं, बल्कि किरदारों के बीच की बातचीत यानी डायलॉग, और उनके कामों यानी एक्शन से आगे बढ़ती है।
हाँ।
टर्को यहाँ नाटक के दो बड़े क्लासिकल रूपों, ट्रेजेडी और कॉमेडी की विस्तार से चर्चा करते हैं। ट्रेजेडी में वो अरस्तु के जरूरी विचारों जैसे हिमाटिया,
वो चरित्र की कोई घातक भूल,
हाँ बिल्कुल, और कैथार्सिस यानी भावनात्मक शुद्धि, इन सब को समझाते हैं।
अच्छा, और नाटक की बनावट के बारे में, जैसे फिल्मों में सीन होते हैं वैसे ही?
हाँ, नाटक में अंक और दृश्य होते हैं, डायलॉग के अलावा स्वगत भाषण होता है
जब पात्र अकेला बोलता है।
हाँ, मंच पर अकेला अपने मन की बात जोर से बोलता है, या स्वगत कथन जब पात्र दर्शकों से कुछ कहता है जो मंच पर मौजूद दूसरे पात्र नहीं सुन सकते।
अरे हाँ,
रंगमंच निर्देश भी अहम होते हैं जो बताते हैं कि मंच कैसा दिखेगा या पात्र कैसे एक्ट करेंगे। ये सब मिलकर नाटक को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं।
ये तो हुई काल्पनिक कहानियों और नाटकों की बात, पर दुनिया में तो बहुत कुछ ऐसा भी लिखा जाता है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है।
हाँ।
भाग 4, गैर काल्पनिक गद्दे की विधाएं, जॉनर्स ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज, इसी के बारे में?
हाँ, और टर्कोइस इसे भी उतनी ही गंभीरता और बारीकी से देखते हैं। अक्सर हम नॉन फिक्शन को सिर्फ तथ्यों का जमावड़ा समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं।
अच्छा,
यहाँ मुख्य तर्क ये है कि नॉन फिक्शन लेखन भी उतनी ही कुशलता और साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है जितना फिक्शन। फर्क सिर्फ इस दावे का है कि ये असलियत बयान कर रहा है।
मतलब जैसे कोई यात्रा वृत्तांत लिखता है या किसी की जीवनी?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें निबंध, एसे, पर्सनल, तर्क वाला, जानकारी देने वाला, जीवनी, बायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, संस्मरण, मेमोअर, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, यात्रा वृत्तांत, ट्रैवल राइटिंग जैसे कई रूप आते हैं। रिटोरिक या वक्रपटुता और अनुनय पर खास ध्यान देते हैं, यानी अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने और दूसरों को कायल करने की कला।
अच्छा, रिटोरिक।
हाँ, रिटोरिक, वो अरस्तु के 3 स्तंभों, लॉगोस तर्क, पैथोस भावना, और एथोस विश्वसनीयता या चरित्र की बात करते हैं। सोचिए, कोई नेता भाषण देता है या कोई कंपनी अपना विज्ञापन बनाती है, वो इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं।
अरे हाँ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है, मतलब सेल्स पिच से लेकर पॉलिटिकल स्पीच तक।
बिल्कुल, तो मतलब नॉन फिक्शन में भी कहानी कहने की कला होती है।
हाँ, आजकल कथात्मक गैर काल्पनिक नैरेटिव नॉन फिक्शन का चलन बहुत बड़ा है।
अच्छा,
जहाँ सच्ची घटनाओं को भी कहानी की तरह दिलचस्प अंदाज में किरदारों और माहौल के साथ पेश किया जाता है।
ये भाग हमें सिखाता है कि हमें नॉन फिक्शन को भी क्रिटिकल मेजर से पढ़ना चाहिए। लेखक ने कौन से तथ्य चुने, कौन से छोड़े, किस नजरिए से कहानी बताई, तर्क कितने मजबूत हैं। ये तो बहुत काम की बात है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, भाग 5, साहित्यिक आलोचना और छात्रवृत्ति,
लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्कॉलरशिप।
ये सुनने में थोड़ा अकेडमिक सा लगता है।
थोड़ा है पर बेहद जरूरी है। ये हिस्सा साहित्य का विश्लेषण करने से एक कदम आगे बढ़कर हमारे विश्लेषण करने के तरीकों पर सवाल उठाता है।
अच्छा, मतलब कैसे विश्लेषण करें इस पर?
हाँ, इसका मूल विचार ये है कि किसी किताब या कविता का कोई एक सही मतलब नहीं होता। हम जिस नजरिए या लेंस से उसे देखते हैं, हमें वैसा ही मतलब नजर आता है।
मतलब जैसे अलग अलग रंग के चश्मे पहन के दुनिया को देखना।
क्या बढ़िया मिसाल दी, बिल्कुल वैसा ही। टर्को यहाँ साहित्य को समझने की कुछ प्रमुख स्कूल या दृष्टिकोणों का परिचय देते हैं संक्षेप में।
जैसे?
जैसे रूपवाद, जो सिर्फ पाठ पर ध्यान देता है, उसकी भाषा, उसकी बनावट, बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं।
सिर्फ टेक्स्ट।
हाँ, दूसरी तरफ मार्क्सवादी आलोचना देखती है कि कहानी में वर्ग संघर्ष, पैसे और ताकत का खेल कैसे चल रहा है।
अच्छा, सामाजिक पहलू।
हाँ, और भी हैं?
हाँ, कई हैं। नारीवादी आलोचना, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, लिंग भेद, पितृसत्ता और महिलाओं के चित्रण पर ध्यान देती है।
जेंडर पर्सपेक्टिव।
हाँ, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, फ्राइड जैसे विचारकों की मदद से किरदारों और लेखक के मन की गहराइयों में उतरती है।
साइकोलॉजी।
बिल्कुल, उत्तर संरचनावाद तो भाषा और अर्थ की स्थिरता पर ही सवाल उठा देता है।
और पाठक प्रतिक्रिया आलोचना कहती है कि मतलब सिर्फ किताब में नहीं बल्कि किताब और पाठक के बीच के इंटरैक्शन में बनता है।
वाह, मतलब एक ही कहानी के इतने सारे पहलू हो सकते हैं।
हाँ,
ये तो दिमाग खोलने वाली बात है
ना।
ये हमें सिखाता है कि हमारी अपनी समझ भी किसी न किसी नजरिए से प्रभावित होती है, और दूसरों के नजरिए को समझने से हमारी समझ और गहरी होती है। बिल्कुल, तो अगर हम पूरी किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो यही कि साहित्य सिर्फ कला नहीं, एक शिल्प भी है,
क्राफ्ट है,
क्राफ्ट है। इसमें हुनर लगता है, तकनीक लगती है। तर्को इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि महान लेखक भी स्थापित औजारों का ही कुशलता से इस्तेमाल करते हैं।
दूसरी बात, एक साझा शब्दावली की ताकत। जब हमारे पास चीजों को नाम देने के लिए सही शब्द होते हैं, जैसे रूपक, कथानक, अविश्वसनीय कथावाचक, तो हम साहित्य पर ज्यादा गहराई से और सार्थक ढंग से बात कर पाते हैं।
हाँ, सिर्फ अच्छा लगा या बुरा लगा से आगे बढ़ पाते हैं।
बिल्कुल। और ये कि विधा, जॉनरा कोई जेल नहीं, खेल का मैदान है।
हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया।
लेखक नियमों से खेल सकता है, उन्हें तोड़ सकता है, और इसी में क्रिएटिविटी पनपती है। साथ ही रूप और सामग्री का गहरा रिश्ता, कहानी कैसे कही गई है ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या कहा गया है।
हाँ, फॉर्म और कंटेंट अलग नहीं है।
भाषा का हर चुनाव, वाक्य की हर लय कहानी के अर्थ पर असर डालती है।
और सबसे जरूरी शायद ये कि पढ़ना एक सक्रिय दिमागी कसरत है, एक्टिव प्रोसेस है।
हाँ,
ये किताब हमें औजार देती है ताकि हम सिर्फ कहानी में बह न जाएं, बल्कि रुककर सोचें, सवाल करें, लेखक के चुनावों को समझें और अपनी व्याख्या खुद बनाएं। ये पढ़ने को ज्यादा मजेदार और फायदेमंद बना देता है।
हाँ, और अंतिम खंड से ये सबक मिलता है कि अर्थ की बहुलता होती है, मल्टीपल मीनिंग्स। किसी कहानी का एक निश्चित मतलब नहीं होता। अलग अलग नजरिए से देखने पर अलग अलग वैध मतलब निकल सकते हैं। ये हमें थोड़ी विनम्रता सिखाता है कि हमारा नजरिया ही एकमात्र सही नजरिया नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, कुछ वैसा ही साहित्य की व्याख्या के साथ भी है।
बिल्कुल। अच्छा, किताब में सीधे तौर पर कोटेशन भले ना हो, पर कुछ विचार ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ, कुछ की आइडियाज।
जैसे एक विचार है कि किसी साहित्यिक उपकरण का नामकरण उस पर शक्ति प्राप्त करना है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को पहचान कर उसे नाम दे देते हैं, जैसे अरे यहाँ तो लेखक ने आयरनी का इस्तेमाल किया है, तो वो चीज रहस्यमयी नहीं रह जाती।
अच्छा,
वो एक जानी पहचानी तकनीक बन जाती है जिसे हम समझ सकते हैं, जिसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये जानने वाले को, पाठक को, एक तरह की ताकत देता है, सशक्त बनाता है।
बिल्कुल, एम्पावरमेंट। एक और विचार था कि शैली लेखक के लिए जेल नहीं बल्कि एक खेल का मैदान है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई।
हाँ, ये दिखाता है कि नियम तोड़ने या मोड़ने में भी एक कला है, एक क्रिएटिविटी है। पहले नियम जानने पड़ते हैं, तभी तो आप उनके साथ रचनात्मक ढंग से खेल सकते हैं। ये परंपरा और नवीनता के बीच के रिश्ते को उजागर करता है।
सही है। और तीसरा, साहित्यिक आलोचना का एक स्कूल सही उत्तर देने वाली मशीन नहीं बल्कि नए सवाल पूछने का एक लेंस है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिटिकल थियरी हमें फाइनल सच नहीं बताती, बल्कि वो हमें पाठ से नए तरह के सवाल पूछना सिखाती है। एक मार्क्सवादी आलोचक, एक नारीवादी आलोचक और एक रूपवादी आलोचक तीनों शेक्सपियर के हैमलेट को पढ़ेंगे तो न सिर्फ उनके जवाब अलग होंगे,
उनके सवाल ही अलग होंगे।
बिल्कुल, उनके शुरुआती सवाल ही एकदम अलग होंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? क्या ये सिर्फ साहित्य के छात्रों या लेखकों के लिए है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, छात्रों और शिक्षकों के लिए तो ये सीधे तौर पर उपयोगी है ही, बेहतर समझने, लिखने, पढ़ाने के लिए।
हाँ।
लेखकों के लिए ये एक तरह का तकनीकी गाइड है अपने शिल्प को सुधारने के लिए। पर आम पाठक के लिए भी इसका बहुत मोल है।
कैसे?
सोचिए, जब आप अगली बार कोई फिल्म देखें या कहानी पढ़ें और आप पहचान पाएं कि अरे यहाँ फोर शैडोइंग का इस्तेमाल हुआ है या ये किरदार एक एंटी हीरो है,
हाँ,
तो आपका अनुभव कितना गहरा हो जाएगा। आप सिर्फ कहानी का मजा नहीं लेंगे बल्कि उसके पीछे की कलाकारी की भी सराहना कर पाएंगे। पढ़ना ज्यादा एक्टिव और दिलचस्प हो जाएगा।
और शायद इसका असर हमारी बातचीत और सोचने के तरीके पर भी पड़ता है।
बिल्कुल, पेशेवर दुनिया में भी ये काम आता है। बयानबाजी के सिद्धांत, लॉगोस, पैथोस, ईथोस आपको अपनी बात ज्यादा प्रभावी ढंग से रखने में मदद कर सकते हैं।
अच्छा, कैसे?
चाहे आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, या किसी से मोलभाव कर रहे हो, आप समझ पाएंगे कि अपनी बात कैसे रखें कि सामने वाला कायल हो। और आप दूसरों के तर्कों को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि वो आपको तर्क से मना रहे हैं या भावनाओं से अपील कर रहे हैं या सिर्फ अपनी पोजीशन या विश्वसनीयता के दम पर बात कर रहे हैं।
हाँ, ये तो विज्ञापनों और राजनीतिक भाषणों को समझने में भी बहुत काम आ सकता है कि कौन हमें कैसे मनाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल। और सबसे बढ़कर मुझे लगता है ये हमारी आलोचनात्मक सोच,
क्रिटिकल थिंकिंग,
हाँ, किसी कविता या कहानी का बारीकी से विश्लेषण करना,
विश्लेशन.
शब्दों के चुनाव पर ध्यान देना,
जी.
छिपे हुए अर्थों को खोजना, लेखक के नजरिए पर सवाल उठाना, ये सब हमें सिखाता है कि हम किसी भी जानकारी को, चाहे वो अखबार की खबर हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई सरकारी नीति, उसे ज्यादा गहराई से और सवालिया नजर से देखें. हम सतह के नीचे झांकना सीखते हैं, ये सवाल करना सीखते हैं कि ये संदेश कैसे बनाया गया है.
तो अंत में इस पूरी चर्चा से क्या लेकर जा रहे हैं? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य कितना भी जटिल लगे, उसे समझना और उसकी सराहना करना संभव है अगर हमारे पास सही औजार हों. ये किताब वही औजार देती है. और ये कि पढ़ना सिर्फ शब्दों को देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी कारीगरी को समझना भी है. एक एक्टिव प्रोसेस.
मेरे लिए शायद ये एहसास कि किसी चीज को समझने का कोई एक ही तरीका नहीं होता. अलग अलग नजरिए, अलग अलग लेंस हमारी समझ को कितना समृद्ध कर सकते हैं.
हाँ, ये भी है.
और ये जानना कि साहित्य के ये शब्द सिर्फ अकादमिक शब्द जाल नहीं, बल्कि असल में सोचने और दुनिया को समझने के तरीके हैं, ये हमें ना सिर्फ बेहतर पाठक बनाता है, बल्कि शायद थोड़ा बेहतर विचारक भी.
बिल्कुल. मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.